इशिका और अभिमन्यु ने अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचा था। इशिका ने अपनी तरफ से हाँ भी कह दी थी। उन दोनों का रिश्ता एक नए तरीके से शुरू हुआ ही था कि अचानक फिर से कुछ ऐसा हुआ जो अभिमन्यु को इशिका से दूर ले जाने के लिए काफी था। इशिका और अभिमन्यु साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी अभिमन्यु के पास पृथ्वी का कॉल आया और उसने बताया कि अस्पताल की छत से कूदकर प्रणाली ने सुसाइड कर ली है। अभिमन्यु और इशिका इस वक्त हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गए। वहाँ प्रणाली इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में थी। वहाँ जाकर उन्हें पता चला था कि प्रणाली ने बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से छलांग लगाई थी, जिसके बाद उसका काफी खून बह गया था। इस वक्त उसकी सर्जरी चल रही थी और ऑपरेशन थिएटर के अंदर बार बार खून ले जाया जा रहा था। इशिका ने अपने मन में कहा, मुझे लगा था कि वो लड़की अभिमन्यु की अटेंशन पाने के लिए ड्रामा कर रही है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। क्या वो सच में वो अभिमन्यु के बिना जिंदा नहीं रह सकती जो उसने खुद की जान देने की कोशिश की? सोचते हुए इशिका ने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा। अभिमन्यु के चेहरे पर परेशानी के भाव थे और उसकी नज़रें ऑपरेशन थिएटर पर टिकी हुई थीं। अभिमन्यु प्रणाली की मानसिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने कल फैसला ले तो लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रणाली ऐसा कदम उठाएगी। अभिमन्यु को फिर से उन दिनों की याद आ गई थी जब वो प्रणाली के साथ उस घर में कैद था। वो अच्छे से जानता था कि उसे बेचने के लिए वहां नहीं लाया गया है। उनका मकसद अभिमन्यु की जान लेना था। तभी वो अभिमन्यु के खाने में जहर डालकर उसे देते थे। अभिमन्यु ने पहले दिन ही उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया था, इसलिए वो उनका दिया हुआ खाना नहीं खाता था। 3 दिन तो उसने जैसे तैसे निकाल लिए थे, लेकिन 4थे दिन रात को भूख के मारे उसके पेट में दर्द होने लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे अभी उसने खाना नहीं खाया तो वो मर जाएगा। अभिमन्यु एक कमरे में पेट पकड़कर बैठा था। वो धीरे से बोला, अगर इन्होंने मुझे सही खाना नहीं दिया तो मैं बिना खाए मर जाऊंगा। मेरे बाद दादी का क्या होगा? नहीं, मैं मर नहीं सकता हूँ। आखिर एक 9 साल का बच्चा कब तक अपनी भूख को काबू करके रखता? तभी उसने देखा कमरे का दरवाजा खुला था और सामने वही लड़की थी जिसने उसकी भागने में मदद की थी। हालांकि वो इशिका थी, लेकिन अभिमन्यु के लिए वो लड़की प्रणाली थी। वो बच्ची अपना खाना लेकर अभिमन्यु से बोली, तुम इनका दिया हुआ खाना क्यों नहीं खाते हो? ऐसा किया तो तुम मर जाओगे, और मैंने सुना था कि मरने के बाद में कुछ भी बाकी नहीं रहता है। क्या वो अंकल तुम्हें गंदा खाना देते हैं? ऐसा करो, तुम मेरा खाना खा लिया करो, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। इतना कहकर उसने अपना खाना अभिमन्यु को दे दिया था। उस लड़की को दिया जाने वाला खाना सेफ था, इसलिए अभिमन्यु ने खाना ले लिया था। 3 महीने तक अभिमन्यु वहां पर कैद रहा, और ऐसे में वो हर रात उसे अपना खाना देकर जाती थी। ये उसी की मेहरबानी थी जो आज अभिमन्यु जिंदा वहां खड़ा था। पुरानी बातें याद आने पर अभिमन्यु ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली थी। उसने प्रणाली को इस हाल में छोड़ दिया था, जबकि एक वक्त में प्रणाली ने उसकी जान बचाई थी। अभिमन्यु अपने गिल्ट में डूबा हुआ था। तभी हॉस्पिटल का डीन उसके पास आया और बोला, माफ कीजिएगा मिस्टर राजवंश, हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं की गई थी। हम मिस प्रणाली कपूर का पूरा ध्यान रख रहे थे, लेकिन रात को उन्हें अटेंड करने वाली नर्स थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और ऐसे में ही उन्होंने ये कदम उठाया। शाम से वो यही बोले जा रही थी कि उसे अब किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए और अपनी जिंदगी अकेले जीनी सीख लेनी चाहिए। अभिमन्यु को सब कुछ बताने के बाद वो वहां से चला गया। ये शब्द अभिमन्यु ने प्रणाली को कहे थे। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तो क्या ये मेरी वजह से हुआ है? इशिका उसके दिल की हालत समझ सकती थी। वो अभिमन्यु के पास आई और बोली, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ, उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उम्र भर वो उसे लेकर नहीं बैठ सकती है। मैंने भी एक वक्त में किसी की जान बचाई थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उम्र भर उसे परेशान करती रहूं। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, किसकी जान बचाई थी तुमने? अभिमन्यु को लगा कि इशिका उसे तसल्ली देने के लिए ये सब बोल रही है। वो उसका ध्यान इन सब से भटकाने की कोशिश कर रही थी। इशिका ने गहरी सांस ली और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, जब मैं छोटी थी तब मुझे भी किसी ने किडनैप कर लिया था। उस जगह पर हम दोनों साथ में थे, कुछ और बच्चे भी थे। वो हमें एक कमरे में बंद करके रखते थे। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु चौंक गया। उसने पूछा, तब तुम कितने साल की थी? इशिका उसकी बात का जवाब देती, उससे पहले ऑपरेशन थिएटर से बाहर एक डॉक्टर निकल कर आया। उसने अभिमन्यु से कहा, मिस्टर राजवंश, हमने उनकी ऑलरेडी 2 सर्जरी कर दी हैं और हमें एक और सर्जरी करनी होगी। आई होप कि इसके बाद उनकी जान बच जाए। डॉक्टर की बातों ने अभिमन्यु को और परेशानी में डाल दिया था। वो सर्जरी लगभग 2 घंटे तक चली। तब तक अभिमन्यु की नजरें एक पल के लिए भी ऑपरेशन थिएटर से नहीं हटी थी। 2 घंटे बाद डॉक्टर निकल कर आया और उसने अभिमन्यु से कहा, अच्छी खबर है मिस्टर राजवंश, मिस कपूरा पूरी तरह खतरे से बाहर है। अभिमन्यु ने राहत की सांस ली। डॉक्टर ने फिर कहा, आपको उनसे मिल लेना चाहिए। हालांकि वो बेहोश थीं और उन्हें अब हल्का होश आ रहा है, फिर भी वो उस हालत में भी आपका नाम बड़बड़ा रही थीं। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी और चेंज करने के बाद प्रणाली के पास आईसीयू में गया। प्रणाली बिल्कुल धीमी आवाज में अभिमन्यु का नाम बड़बड़ा रही थी। उसे देखने के बाद अभिमन्यु जाने को हुआ तो उसने बिल्कुल हल्के से अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया था। अभिमन्यु को उसे सोते हुए देखकर याद आया कि बचपन में उस घर में वो उस छोटी बच्ची को अपनी गोद में सुलाता था। अभिमन्यु प्रणाली की देखभाल करने के लिए उसके पास था, जबकि इशिका बाहर खड़ी कांच की खिड़की से उन्हें देख रही थी। ऐसे लग रहा था कि उनके बीच में सिर्फ वो खिड़की ही नहीं, एक लंबी दीवार आ गई थी। इशिका वहां खड़ी थी तभी कुछ नर्सेज आपस में बातें कर रही थी। उनकी बातें इशिका के कानों में पड़ी। तुमने सुना, उस पेशेंट को बहुत मुश्किल से बचाया गया है। सुना है वो साइकिक वार्ड से आई है, हालत बहुत खराब थी। हाँ मैंने देखा, और मिस्टर राजवंश भी यहाँ पर आए हुए हैं। सुना है वो लड़की उनसे जुड़ी हुई है, शायद वो उनकी गर्लफ्रेंड रही होगी। पहले वो उसका इलाज लंदन से करवा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने शादी कर ली तो वो यहाँ पर आ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की किसी भी दवाइयों से ठीक होगी। अब तो इस तरह ऊपर से कूदने के बाद कभी वो ठीक से चल भी नहीं पाएगी। मैंने तो सुना था कि उसने इसलिए सुसाइड की क्योंकि कल मिस्टर राजवंश उसके पास आए थे, उनकी पत्नी भी उनके साथ में ही थी। वो बोल रहे थे कि अब वो उनसे कभी मिलने नहीं आएंगे। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे तो इन सब में उसकी पत्नी पर गुस्सा आ रहा है, जो अचानक से उनके बीच में आ गई। उनकी बातें सुनकर ऋषिका ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ बांध ली थी। उसने गहरी सांस लेकर अपने मन में कहा, क्या बचपन में किए हुए वादे इतने जरूरी होते हैं कि आप चाहकर भी उनसे अलग नहीं हो सकते। अभिमन्यु ने मुझे चुना क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। ऐसे तो कोई भी किसी से वादा कर देता है, बच्चों की बातों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। वादा शब्द ऋषिका के लिए भी बहुत मायने रखता था। उसे उस लड़के की याद आई जिसने उसे बचपन में वादा किया था कि वो उसे लेने आएगा, लेकिन कभी ऋषिका प्रणाली की तरह उसके भरोसे नहीं रही। उसने खुद को सेल्फ डिपेंडेंट किया। ऋषिका अपने ख्यालों में खोई हुई वहां खड़ी थी। तभी अभिमन्यु बाहर आया और ऋषिका से बोला, तुम क्या सोच रही हो?
ऋषिका ने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा, जो काफी थका हुआ लग रहा था। वो भी मजबूर था। ऋषिका उसे ये नहीं जताना चाहती थी कि कल उसने वादा किया था कि वो कभी प्रणाली से नहीं मिलेगा, लेकिन आज ही उसे प्रणाली के पास आना पड़ा। ऋषिका ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं उस लड़के के बारे में सोच रही हूँ जिसको मैंने बचपन में बचाया था। अभिमन्यु ने ऋषिका को वहां की बेंच पर बैठने का इशारा किया। वो उसके पास आकर बैठ गया और बोला, और उसके बारे में क्या सोच रही हो? यही कि मुझे अब उस वादे और उस इंसान को भूल जाना चाहिए। उसने मुझे अलग होने से पहले एक बहुत कीमती चीज़ दी थी। उसे देखकर लग रहा है कि वो काफ़ी पुरानी और महंगी है। मुझे उसे उसकी ये चीज़ वापस लौटा देनी चाहिए, ऋषिका ने जवाब दिया और फिर अपनी पॉकेट से उस रिंग को निकालने लगी। ऋषिका उस अंगूठी को अभिमन्यु को दिखाना चाहती थी, हालांकि उसने कभी मालविका के सामने उसे निकाला नहीं, क्योंकि मालविका उसे देखती तो अब तक उसे बेच चुकी होती। इससे पहले कि ऋषिका अभिमन्यु को वो रिंग दिखाती, प्रणाली जोर से अभिमन्यु का नाम लेकर चिल्लाई। अभिमन्यु बिना सोचे समझे अंदर चला गया। वो काफी घबरा भी गया था। वहीं ऋषिका बाहर हाथ में अंगूठी पकड़े सोनी निगाहों से उसे जाता हुआ देख रही थी। ऋषिका के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। वो रिंग को लेकर बाहर जाने लगी। थोड़ा दूर चलने पर वो उस कुरियर कंपनी में पहुंच चुकी थी जहां के लिए उसने कभी काम किया था। उसे देखते ही एक डिलीवरी बॉय ने पहचान लिया। वो बोला, अरे मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कोई काम था तो मुझे कॉल करके बोल देती, मैं पार्सल घर आकर ले जाता। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पास में ही थी, मुझे एक पार्सल भेजना है, ऋषिका ने जवाब दिया। उसके कहने पर पार्सल वाले ने उसे एक बॉक्स दिया जिसमें ऋषिका ने उस रिंग को अच्छे से पैक कर दिया था। उसके बाद वो उससे बोली कि आप मुझे एक पेन और पेपर दे सकते हैं, मुझे एक लेटर लिखना है। उस लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही देर में वो ऋषिका के सामने पेन और पेपर के साथ खड़ा हुआ था। ऋषिका वहां बैठकर अभिमन्यु के लिए एक नोट लिखने लगी। हेलो जिद्दी दोस्त, उम्मीद है कि मेरा लेटर देखकर तुम परेशान नहीं होंगे। मैं नहीं जानती कि इन सालों में तुमने मुझे याद किया या नहीं, या फिर कभी मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी। मैं तुम्हें आज ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ ताकि तुम्हें बता सकूँ कि तुम्हें मुझे ढूंढने की या उस वादे को निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बचपन में तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आकर मुझसे शादी करोगे, पर अब उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने शादी कर ली है और मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। याद है उस वक्त तुमने मेरे को एक अंगूठी दी थी, वो मुझे बहुत कीमती लगी। शायद तुम्हारे ख़ानदान की कोई निशानी हो तो प्लीज़ आप उस अंगूठी को किसी ऐसे इंसान को दीजिएगा जो आपकी लाइफ में स्पेशल हो। ऋषिका ये लेटर अभिमन्यु की वजह से लिख रही थी। उसे लगने लगा था कि कहीं अभिमन्यु की तरह वो लड़का भी उम्मीद लगाकर उसका इंतजार तो नहीं कर रहा था। ऋषिका ने लेटर में उसे साफ साफ अपनी शादी के बारे में लिख दिया था ताकि वो कोई उम्मीद लगाकर ना बैठे। इतना नोट लिखने के बाद अचानक ऋषिका को कुछ सूझा और वो आगे लिखने लगी। याद है उस वक्त मेरा कोई नाम नहीं था,
अब मुझे नाम मिल गया है। मेरा नाम इशिका सिंघानिया है। मैं अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख रही हूँ। कभी आपको आओ तो हम दोनों साथ में घूमने चलेंगे। मैं आपको अपने पति से भी मिलवाऊंगी। याद है उस वक्त मैं अपने हिस्से का रात का खाना तुम्हें देती थी, लेकिन अब तुम आओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा डिनर अरेंज करूंगी। लेटर के आखिर में इशिका ने अपना मोबाइल नंबर और राजवंश विला का एड्रेस लिख दिया था। हालांकि न जाने क्यों उसे वो लेटर लिखते हुए थोड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसी लड़के के वादे की वजह से वो कभी हिम्मत नहीं हारी थी। उसके बाद इशिका ने उसे पैक किया और कुरियर बॉय को दे दिया। उसने पूछा इसे कहाँ डिलीवर करना है। इशिका ने उसे पास ही के टाउन का एड्रेस बता दिया था। उस वक्त अभिमन्यु वहीं पर रहता था। इशिका को लगा वो ज्यादा ही सोच रही है, शायद वो अंगूठी कीमती ना हो, क्योंकि गांव में रहने वाला लड़का इतनी कीमती रिंग नहीं रख सकता था। अच्छा, जिसे ये लेटर देना है उसका नाम क्या है, कुरियर बॉय ने पूछा। नाम का जिक्र होने पर इशिका सोचने लग गई थी। अभिमन्यु ने उस वक्त अपना नाम किसी को नहीं बताया था। उसे खुद की सेफ्टी की कुछ ज्यादा ही परवाह थी, लेकिन उसने इशिका को इतना कहा था कि वो अपने परिवार का सबसे छोटा बच्चा है, इसलिए उसे उसके दादाजी घमंडी बंदर कहकर बुलाते हैं। इशिका ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, घमंडी बंदर, थोड़ा अजीब नहीं है क्या ये नाम? बिल्कुल भी अजीब नहीं है। आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त पता नहीं कैसे अजीब नाम रखते हैं, उनसे तो थोड़ा बेहतर ही लग रहा है, कुरियर बॉय ने हंसकर कहा। ठीक है, फिर ये कुरियर तुम खुद डिलीवर करके आओगे। इसमें एक रिंग है जो कीमती है, तो ध्यान रखना, इशिका ने कहा। ऐसा है तो ये कुरियर जिसका है मैं उसके हाथ में इसे पकड़ा कर आऊंगा, और ये मेरा वादा रहा, कुरियर बॉय बोला। इशिका के साथ पहले भी काम करने की वजह से वो उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली था। इशिका ने उसे थैंक यू कहा और वहां से चली गई। वो वापस हॉस्पिटल नहीं गई थी। इसके बजाय वो अभिमन्यु को मैसेज करने के बाद राजवंश विला जाने लगी थी।